Welcome to this episode of the Influencer Talks. My name is Atul Mathur and I am the host of this podcast show. With each episode, I present an interview with an influencing and eminent personality to motivate and energize you to achieve your objectives in life, whether small or big. Today, my guest on the show is Alok Unnial, a critically acclaimed painter and poet who has devoted his entire life for the upliftment of art and culture in India. The Influencer Talks के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं एक विश्वविख्यात पेंटर आलोक उनियाल। आलोक उनियाल की पेंटिंग की एग्जीबिशंस देश विदेश में होती ही रहती हैं, लेकिन एक और खास बात है कि आलोक एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। तो आइए अपनी आज की बातचीत हम आलोक उनियाल के साथ शुरू करते हैं। स्वागत है आलोक जी आपका द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में।
नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रोग्राम पर एक कलाकार को इनवाइट करके एक शुरुआत कर दी है और मैं समझता हूँ कि मतलब सभी विषयों को आप टच कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है
जी।
और जिस समय पर आपने इसको मुकाम देने की कोशिश की है वो समय सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लाने वाला है और एक नया एक्सप्लोरेशन आपने किया है, उसके लिए आपको शत-शत प्रणाम।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। तो आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे वही होगा कि आप एक बहुत ही उम्दा पेंटर हैं, तो इसकी शुरुआत आपके कैरियर में कहां से हुई, कहां आपके किस उम्र में वो आपके ख्याल आया कि आप एक पेंटर होना चाहते हैं?
जी मैं ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कलाकार को उपलब्धि पाते हुए लोग बहुत देखते हैं और उसको देखकर वो चाहे वो आपके फिल्म इंडस्ट्री के हों या पेंटर हों या म्यूजिशियन हों, तो जब उसको प्रसिद्धि पे देखते हैं तो लोग सब कहते हैं अरे ये तो बड़ा आसान है और इस तरह से हम भी नेम फेम मनी और सब कुछ एक्लेम जल्दी से कर लें। लेकिन जो शुरुआत वाला प्रश्न किया वो अगर सभी जाने तो सभी के लिए बहुत एक संदेश प्राप्ति का मैसेज रहेगा वो
जी।
तो जब हम चाइल्डहुड में शुरुआत करते हैं तो हर बच्चा जो है आर्ट की तरफ ही आकर्षित होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बॉर्न होने के बाद आकृतियों को ना देखे, रंगों को ना देखे, प्रकृति को ना देखे। पहला परिचय उसका साउंड से होता है तो साउंड से ही म्यूजिक बनती है और इसी तरह से फिर वो रंगों को पहचानने लगता है। बिफोर स्कूलिंग, मतलब बिल्कुल अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो ये एक डेवलपमेंट अंदर सभी के होता है आर्ट का, बट वो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू फेड अप होने लगता है, लोग अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा है कि मैं शुरुआत में बचपन में जो है अगर कुछ ड्रॉ करता था तो उसको फैमिली बड़ा इंकरेज करती थी कि एक नई चीज कर रहा है बच्चा, और जो भी फैमिली फ्रेंड्स आते थे वो भी बोलते थे कि हाँ शायद आर्टिस्ट बने। तो इस तरह का जब माहौल बनता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेन चीज है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें तो वो उसी से मोल्ड हो जाएगा और उसके बाद वो शेप थ्रू एजुकेशन उसी चीज में लेता है तो काम करता। तो शुरुआत में मेरी मुझे तारीफ मिलती थी, मैं कुछ इलस्ट्रेशन कॉमिक्स के और कैलेंडर्स के और फिल्मों के पोस्टर्स जो है उनको कॉपी करता था तो नेबर्स हुए, फ्रेंड्स हुए, सभी अप्रिशिएट करते थे। सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाना, तो शुरुआत में हम लोग पोर्ट्रेट बनाए हमने उसको, फिर स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैंने उन पोर्ट्रेट्स को फिर सेल भी करना शुरू करा और फिल्म के पोस्टर्स को देख करके, फिर उस समय कोई बहुत ज्यादा ऐसी किताबें नहीं होती थी, मैं एक छोटे से टाउन में मुजफ्फरनगर में मेरी शुरू की एजुकेशन हुई है तो हम बुक्स को ढूंढते थे तो मार्केट में बुक आज तो गूगल पे आप सर्च करिए डिफरेंट पेंटिंग्स आ जाते हैं तो उस समय हमारे पास रिसोर्सेस कम थे। ये जबकि 80s की बात कर रहा हूँ मैं तो रेयरली कोई बुक जो है हम ढूंढ पाते थे या कोई फॉरेन की बुक जो है ओल्ड मार्केट में, तो रिसोर्सेज कम थे बट मैंने खुद ही ड्रॉ करना शुरू करा और पोर्ट्रेचर में मेरी महारत हासिल की उस वक्त, और मतलब 11th 12th लेवल पर मैं सामने ही बैठ के बना दिया करता था। तो
जी
ये इस तरह का ये शुरू का जो चाइल्डहुड जर्नी है वो रही।
अलग जी, ये आपने जो अभी कहा मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि आपको आपकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, फ्रेंड से सपोर्ट मिला। मैं कहूंगा कि आप वन ऑफ दोज लकी वंस हैं जिनको सपोर्ट मिला। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि दुनिया जो है, एजुकेशन सिस्टम भी और इवन फैमिलीज, उनको ये लगता है कि पढ़े लिखे और आगे बढ़े, कैरियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज में हम लोग सिमट के फैमिलीज रह गई हैं। तो वहां उसको किस तरह से हम आर्ट और कल्चर को आज के उसके अंदर बढ़ाएं, किस तरह से उनको सपोर्ट मिले जो इसको करना चाहते हैं।
एक्चुअली वो ये है कि परिवारों में जो है कला के प्रति स्वीकृति लाना बहुत जरूरी है फ्रॉम द बिगनिंग। तो उसके
जी
लिए जब जो पेरेंट्स होंगे और अगर उन्होंने अपने टाइम में थोड़ा सा आर्ट और एस्थेटिक सेंस को डेवलप किया होगा, चाहे वो आर्टिस्ट न बने हों
जी
लेकिन उसको कहीं ना कहीं टच किया होगा, तो वो फिर अपने बच्चों में भी उसको पहचान पाएंगे और उसको प्रेरित कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स की जब एजुकेशन हुई वो आर्ट से दूर रहे, फिर अगली जनरेशन वो आर्ट से दूर रहेगी। अगर बच्चा कर भी रहा होगा तो समझ नहीं पाएंगे। और
जी
दूसरा सबसे बड़ा पक्ष ये है कि हमारे कंट्री में मैक्सिमम पार्ट में आर्ट को टाइम पास ही मानते हैं अभी भी, इसको ये नहीं समझ पाते कि इससे जॉब या इनकम सोर्स भी डेवलप हो सकता है। सभी चीजों को, सभी पदों को और सभी उपलब्धियों को मनी मनी के
देखा
सापेक्ष में
जाता है।
तोला जाता है।
जी
हाँ, मनी के पैरेलल देख के, ये इसमें मनी आएगा नहीं आएगा, इसमें हम एजुकेशन करें या इस फील्ड में आगे जाए ना जाए, जबकि
जी
ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमारा सोशल सिस्टम भी वही है, रिकॉग्निशन तभी है जब आप पर मनी आता है, अदरवाइज वो नहीं देखते कि इस फील्ड में भी कोई वो है। ग्रोथ शुरू में ही रुक जाती है, जहाँ स्टार्टिंग बडिंग पीरियड होता है आर्टिस्ट का,
जी जी
स्कूलिंग टाइम। और फिर
प्रणाम।
उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो जो जिनको मैं शब्द बोलूंगा कमाऊ सब्जेक्ट हैं, उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं
जी
और उसके बाद जो एक आर्टिस्ट है वो दब जाता है। लेकिन लाइफ के अदर पार्ट से जब सब कुछ लोग रिसीव कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि आर्ट की तरफ वापस आते हैं अपनी बैक जर्नी, क्योंकि उस समय उनके पास मनी भी होता है लेकिन शांति नहीं होती, खुशी
जी
नहीं होती, जॉब
जी
कर रहे हैं उसको बोझ की तरह ढो रहे होते हैं। तो हम लोग किसी भी पीरियड में कला को एंजॉय कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें, परिवार की स्वीकृति बहुत जरूरत है।
जी
जी
आलोक जी, आज की जिस मुकाम पर आप हैं, उस मुकाम पर आने के बाद पेंटिंग या आर्ट आपके लिए क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप?
देखिए, आर्ट की जर्नी तो अभी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि कोई मुकाम हमने पॉइंट हासिल कर लिया,
जी
और वो जो अर्ज है, वो जो थ्रस्ट है, वो अभी भी बनी हुई है और इसीलिए कलाकार जिंदा है। अगर हम ये मान लें कि अब अचीव हो गया
जी
और सबसे बेस्ट पेंटिंग बन गई या फेम जो है जो होनी थी हो गई, तो वहाँ आर्टिस्ट खत्म हो जाता है। तो अभी
जी
भी हम खोजते रहते हैं
जी
और इस जर्नी में मैं ये कहूँगा कि मतलब आर्ट जो है, अगर आर्ट की आप मेरे लिए डेफिनेशन है, तो आर्ट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल
ओके
आर्ट जो है सबसे पहले श्रम के लिए बनाई जाती है, स्वान्तः
जी
सुखाय, तो ये हमारे पुराणों में भी बोला गया है कि सबसे पहले जो आप लाइन खींच रहे हैं वो स्वयं के लिए खींच रहे हैं। तो
जी
हम जो कला करते हैं फाइन आर्ट, मैं बेसिकली अपना जो मेरा क्षेत्र है वो फाइन आर्ट का है, तो
जी
फाइन आर्ट का मतलब है ललित कला, तो जो आपको लालित्य से भरपूर कर दे और एस्थेटिकली आपको फुलफिल करे, वो आर्ट है। तो पेंटिंग जो है मेरे लिए टू डायमेंशनल स्पेस है जिसको मैं रंगों से, इमोशन से और इंट्रोस्पेक्शन से फिल करता हूँ और सबसे पहले उससे हैप्पीनेस रिसीव करता हूँ। और जब उसका अगर कोई प्रशंसक या खरीदार दुनिया में है तो
हाँ
वो उसको अप्रिशिएट करता है और वो मुझे अटैच करता है या इंट्यूशन के थ्रू या जैसे भी,
जी
बट मैं
जी
पहले अपने लिए बनाता हूँ कोई भी चीज।
एज एन आर्टिस्ट, एज ए पेंटर, आप किस चीज को लेकर चलते हैं, आपका एम क्या है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं?
एक कलाकार के खासकर जो फाइन आर्ट की बात कर रहा हूँ
जी
उसमें ये पक्ष बहुत जरूरी होता है, हम क्या महसूस दे रहे हैं।
जी
जैसे कि कुछ लोग कॉमर्शियल आर्ट करते हैं तो वो पोस्टर लाइक होती है, इलस्ट्रेशंस होते हैं, कहानी को चित्रण कर रहे हैं जो कहानी किसी और ने लिखी है, तो उसको हम वो डिपिक्ट करते हैं। बट फाइन आर्ट में क्या होता है कि हम अपने अंदर की जर्नी, जो इंट्रोस्पेक्शन है, हमारी जो फिलोसफी है, जो लाइफ एक्सपीरियंस है,
जी
उसको हम पेंट करते ही हमारा पुनः पुनः उस पेंटिंग में आता है
जी
और उस जर्नी को कोई देखता है या सुनता है या उस फिलोसफी को देखकर प्रेरित होता है तो वो उसको अच्छा लगता है। तो हम अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो है, जो मेरे सब्जेक्ट होते हैं वो यात्राओं के होते हैं, मैं
जी
ट्रेवल करता हूँ, समटाइम्स फोटोग्राफी करता हूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो जो प्रकृति का सौंदर्य है या प्रेम है, कुछ युवाओं का प्रेम कुछ सीरीज में मैंने दिखाया,
जी
और जो ट्रेवल एक्सपीरियंस थे जैसे कोलकाता पे सीरीज करी तो कोलकाता विजिट किया, वहां रहा 15
जी
डेज और 2-3 बार गया, देन उसको पेंट किया, तो मैं उस पर बहुत अच्छा पेंट कर पाया क्योंकि उसको फील किया। उसके बाद गोवा, गोवा को पेंट किया तो गोवा जाके रहा और वहां
जी
ड्राइंग्स करी, फिर उसको होल द ईयर यहाँ अपने स्टूडियो में आके पेंट करता रहा 2008 में
जी
और
जी
2007 में कोलकाता सीरीज की। इस तरह से मैंने ट्रेवल करके उत्तरांचल पे एक सीरीज बनाई, उत्तरांचल तो मेरा नेटिव प्लेस ही है और
जी
वहाँ
जी
हिल्स, और जो वो उसको फिलोसफिकल लाते हैं, तो हम उसको इलस्ट्रेटिव नहीं बनाते हैं, उसको एक जो 2 डायमेंशनल स्पेस है उसी में पूरी हमारी इंट्रोस्पेक्शन फिलोसफी सारा होता है,
जी
नरेशन नहीं होती। तो हम अपने पेंटिंग्स के थ्रू लव, इमोशंस, ट्रेवलिंग, ये
जी
सारे एलिमेंट्स और फिलोसफी उसको शो करते हैं,
हाँ
और दर्शक उसको जब देखता है तो वो अप्रिशिएट भी करता है और चिंतन करता है, तो उससे उसे खुशी वो प्राप्त होती है, हम अपनी जो खुशी है उसमें ट्रांसफर करते हैं अपनी पेंटिंग से।
जो आपने अभी कहा कि एक नरेशन होता है, आप पहले एक नरेटिव डिसाइड किया कि आप कोलकाता पे काम करेंगे या गोवा पे आपने काम किया, उत्तरांचल पे किया। कभी कुछ ऐसा भी होता है जहां आप ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है, मैं कुछ पेंटिंग शुरू करता हूं और पेंटिंग बनने के बाद आपको लगे ये कुछ बन गया, ये हमने डिपिक्ट किया इसमें, वो कौन सी फीलिंग
जी
है?
जी
जी
जी बिल्कुल। देखिए फाइन आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट का प्रोसेस अलग अलग है, तो जो अमूर्त रूप से जब हम शुरू करते हैं तो एक अमूर्तन एब्स्ट्रैक्ट माइंड होता है,
जी
और खासकर जो बिल्कुल फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं तो उनका तो उनके चित्रों में कोई आकृतियां होती नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट माइंड से शुरू करते हैं और उसी पर वो उसी को कैनवस पे उतरते हैं।
जी जी
मेरा जहां तक है, मैं तो फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ, फिगरेटिव मतलब आकृति मूलक, जिसमें कि आपको आकार दिखेंगे,
जी
आकृतियां दिखेंगी, तो
नहीं
वो है मेरे आकार ह्यूमन फिगर। तो
जी
ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने से पहले मुझे वो ड्राइंग स्केचिंग करने पड़ेंगे, हालांकि शुरुआत एक बिल्कुल अमूर्त मन से, जो एस्पेक्ट आपने कहा कि हम एक
जी
लॉस्ट पॉइंट से करते हैं, लॉस्ट पॉइंट जैसे कहूंगा,
राइट
उस समय कोई थीम नहीं होती बट कोई चीज हमें स्ट्राइक कर जाती है, तो फिर मैं फिगरेटिव पेंटर होते हुए तो उसको आकारों में ढूंढता हूँ, तो
जी
मुझे वो मान लिया ट्रैवलिंग है या फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने गोवा में वायलिन को लिया, तो वायलिन फिर उसकी ड्राइंग करना, ह्यूमन फिगर्स के साथ उसको इन्वॉल्व करना, म्यूजिक को शो करना, तो उसके लिए आकार गढ़ने पड़ते हैं। जैसे तो गोवा सीरीज में नावें बनाई मैंने, तो नाव तो उससे वो गोवा को डिपिक्ट किया, तो मुझे आकृति ढूंढनी पड़ेगी
जी
और मैं
जी
उन आकृति के उस नरेशन या सब्जेक्ट को, जो प्लॉट है, प्लान है,
जी
उसको
जी
दिखाता हूँ।
आलोक जी, कहते हैं ना, आर्टिस्ट एक अलग दुनिया में रहता है, उसकी एक अपनी दुनिया होती है, अपने चारों तरफ बना के वो उसी में जीता है। लेकिन एक चीज और भी है कि दुनिया प्रैक्टिकलिटी से चलती है और आजकल कमर्शलाइजेशन हर चीज का हो रहा है। तो कमर्शलाइजेशन अगर आर्ट में आता है तो आप क्या समझते हैं कि क्रिएटिविटी उससे इफेक्ट होती है?
देखिए कॉमर्शलाइजेशन वहाँ तक ठीक है जहाँ तक आर्टिस्ट को सपोर्ट करने वाली बात है,
जी
और बिना कॉमर्स के तो हम लोग कैनवस तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि जो आर्ट मटेरियल है, जो और स्टूडियो जो भी हमारे टूल्स हैं उनके खर्चे, इम्पोर्टेड कलर यूज करते हैं हम, जो जिससे पेंटिंग की एक लॉन्ग लाइफ बने, तो उसके लिए हमें कॉमर्शियल तो एस्पेक्ट देखना पड़ता है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो ये कॉमर्शियल एस्पेक्ट हमारे माइंड में नहीं होता बट अपने लिए होता है। लेकिन
जी
लॉन्ग टर्म में जब आर्टिस्ट का नाम एक प्रोफाइल बन जाता है, फेम गेन हो जाती है, तो वो उसके कुछ कमर्शियल प्रमोटर सपोर्टर्स होने जरूरी हैं।
जी
पुराने पुराने काल में आप देखें तो जो राजा था या नवाब था वो आर्टिस्टों को प्रश्रय देता था, पैट्रन बोलते थे।
बिल्कुल
तो वो
बिल्कुल
इसीलिए था कि भाई इस फील्ड को इन क्रिएटिव लोगों को, चाहे वो साहित्य, संगीत, म्यूजिक, नृत्य
जी
या लेखन में है, इन प्रतिभाओं को सपोर्ट सिस्टम तो बहुत जरूरी है और
जी
आज भी ये बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। नहीं
जी
तो लोग कॉमर्शियल एस्पेक्ट सारे अदर फील्ड्स में तो उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो
राइट
आर्टिस्ट को चाहे वो सरकारें हों चाहे प्राइवेट संस्थाएं हों,
जी
कॉमर्शियली सपोर्ट करें, बट
जी
कॉमर्शियल इतना ना हो कि वो आर्ट के सब्जेक्ट और उसकी जो स्टाइल है उसको इम्पैक्ट करे। मतलब आर्टिस्ट को लगता है कि कोई कैसा फाइन आर्ट में, मेनली जो
जी
फाइन आर्ट है उसमें अगर आर्टिस्ट को कोई प्रोजेक्ट देता है तो
जी
वो अपने मन से बनाए बट सपोर्ट उनकी हो, तो ये इसका रियल एस्पेक्ट है। और इसके अगेंस्ट अगर कोई अपने मर्जी के ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो फुल्ली कॉमर्शियल हो गया, वो आर्ट को मारने वाली बात है।
राइट
तो
राइट
हम लोग अपने लिए बनाते हैं लेकिन उसको सपोर्ट मिलती है किसी बायर की, कलेक्टर्स की,
जी
तो वो उसको लॉन्ग टर्म में करता है और देश का नाम करता है इसको।
आज के उसमें अगर हम देखें, फॉर द बिगनर्स मैं बात करता हूं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है आर्ट को प्रमोट करने के लिए, इनिशियली जैसे आपने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो तो बाद में आएंगे, लेकिन क्या इनिशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट लेवल पर होना चाहिए, चाहे वो कॉलेजेस को लेकर हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबिलिटी के ऊपर हो, गैलरीज हो या एनकरेजमेंट हो, वो हमारे यहाँ उसका वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अपने देश में?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कलाकार की जब शुरुआत वाली बात है तो उस समय आप ये देखिए कि जब कॉलेज से निकलते हैं हम लोग,
जी
कोई भी कला क्षेत्र, चाहे आपका थिएटर हो गया, थिएटर,
जी
फिल्म, तो जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं वो शुरुआती जब सपोर्ट, जैसे ही कॉलेज की डिग्री करके निकले तो उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और
बिल्कुल
कुछ कुछ लोग तो जॉब में चले जाते हैं क्योंकि पहले ऑफर जॉब के आते हैं, वहाँ आर्टिस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग फ्रीलांस करने का एक्सेप्ट करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, तो
जी
उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरा कहना है कि वहीं से आर्टिस्ट को गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं
जी
पिक करने, वहीं से अगर इस क्षेत्र को सम्मान देना है तो वहां से वो अगर पिक कर लेते हैं सभी आर्टिस्ट को, मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं करता,
जी
उनको
जी
सभी पिक करें और उनसे उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट सपोर्ट देते हुए, जैसे लाइक
जी
स्कॉलरशिप होती है, और
जी
उनसे पेंट करवाएं या जो भी वो आर्ट करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं, और
जी
उसको सारी, मान लिया पेंटिंग है तो वो बनी, अगर उस स्टूडेंट ने बनाई तो सरकारी संस्थाओं में लग जाती है एक मिनिमम मिनिमम सपोर्ट पे,
करेक्ट
जिसके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट में सरकार को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
जी
और जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है तो स्कॉलरशिप तो कुछ ही लोगों को मिलती है, एक लॉबी सिस्टम है और उसका एक क्राइटेरिया है, तो सारे आर्टिस्ट उसको फुलफिल अगर नहीं कर पाते या उसको अप्रोच नहीं कर पाते, उस लॉबी में एंटर नहीं कर पाते, तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। वो गिनी चुनी स्कॉलरशिप है जो प्री अज्यूम्ड होती है, प्री फिक्स होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि 100% कलाकारों को पिक कर ले, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, और उनसे वो चीजें करा के 1 ईयर या 6 मंथ का कुछ भी टाइम स्लॉट दे के उनसे काम कराए, जिससे वो किसी फिक्स जॉब में ना चला जाए और भारत की संस्कृति के लिए काम करे कुछ दिन। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा। दूसरे स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो उसको स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसके पॉकेट में कुछ मनी भी होगा, आर्ट मटेरियल बाय करेगा, स्टूडियो का रेंट देगा और वो फिर अपनी एक स्टाइल पर काम करना शुरू कर देगा। फिर वो जब डेवलप डेवलप हो जाता है तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई सरकार जो है या प्राइवेट संस्थाएं कुछ बड़े बड़े फेयर्स ऑर्गेनाइज करे, जिससे जहाँ कला के मेले लगे और गैलरीज आए, आर्टिस्ट को पिक करें। तो ये इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो अभी तो सरकार की तरफ से कोई नहीं हो रहा है। पहले
जी
एक ट्रिनाले करके इवेंट होता था जो कि बंद कर दिया गया
ओके
और उसमें वर्ल्ड की गैलरीज आती थी और बहुत
जी
अच्छा एक प्रोग्राम था आर्ट के लिए, और
ओके
लेकिन उसकी जगह अब प्राइवेट संस्थाएं एक्टिव हो गई तो वो इंटरनेशनल आर्ट फेयर इंडिया में करती हैं,
जी
सब कुछ होता है, उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिव एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी है, और जैसे फैशन डिजाइन के फेयर होते हैं, फिर आर्ट के भी होते हैं, लेकिन वो साल में एक दो, और सरकार का तो कोई नहीं है इस वक्त, सब प्राइवेट संस्थाएं उस पर अच्छा गेन कर रही है, तो क्यों कोई भी सरकार आज की या पहले की क्यों नहीं इस तरह के प्रोग्राम करती, और उससे सारे आर्टिस्टों को, गैलरीज को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। ललित कला अकादमी कभी कभी इस तरह का इवेंट बीच में किए, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं थे, जैसे वर्ल्ड में, विदेशों में, कोरिया में और जापान में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, रेजिडेंसी प्रोग्राम होते हैं, आर्टिस्टों को सभी को पूरा सपोर्ट मिलता है, और उनको उन प्रोग्रामों में, अभी क्या है कुछ लॉबी होती है तो कुछ ही आर्टिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं।
जी, तो मतलब उतनी फैसिलिटी अभी सरकार की तरफ से आप कहते हैं नहीं है, जो क्रिएट की जानी चाहिए हमें अपने इस आर्ट
जी
के सर्वाइवल के लिए, करने
हाँ,
के लिए।
एक्चुअली इस फील्ड को इग्नोर किया जाता है, जिस दिन आर्टिस्ट ना नेम और फेम और कॉमर्शियली इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको फिर वो कहते हैं ये हमारे कंट्री का है, हमारा है,
हाँ
लेकिन
हाँ
आपने इसमें बनने में योगदान कहाँ दिया, वो रूट लेवल पे कहाँ सपोर्ट की, वो कोई नहीं देखता न सोचता है।
तो बेसिकली एक चीज और भी है, जैसे आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कोई पेंटिंग या कोई अपना वो सेल करने जाते हैं, तो इनको खास तौर से इंडिया में अभी भी एक लग्जरी आइटम माना जाता है कि अगर आप पेंटिंग खरीदने जा रहे हैं तो आप एक कलेक्टर ही होने चाहिए, एक बड़े लेवल पर आप उसको खरीदते हैं। लेकिन वो छोटा छोटा जो आप कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में अगर उनको प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को?
हाँ, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि वो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल क्रॉस करते ही उसको वहीं से एक सपोर्ट मिल जाए, लाइक एक फंडिंग या स्कॉलरशिप 100%
जी
आर्टिस्ट
जी
को, और जिससे वो जो कुछ क्रिएट करें वो गवर्नमेंट का या कुछ संस्थाओं का एसेट बन जाए, उनकी
जी
वॉल्स को डेकोरेट हो जाएंगी, एक कलेक्शन हो जाएगा, कल को आर्टिस्ट फेमस होता है तो 10 साल बाद तो उन चीजों की वैल्यू बनेगी, वो
जी
बेकार नहीं जाएंगी अगर उसको केयर कर सके। म्यूजियम्स का सपोर्ट कर सकते हैं,
जी
वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं, इस तरह की रेगुलर।
पेंटिंग और आर्ट फॉर सोशल जस्टिस, आई थिंक लॉट कैन बी डन ऑन दैट, जिसपे मेरा हिसाब से शायद काम अभी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, चाहे हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें। तो इस सोशल जस्टिस के लिए आर्ट को किस तरह से और इन्वॉल्व कर सकते हैं?
हाँ, इसके लिए देखिए जो फाइन आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह से जब अपनी पेंटिंग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सोशल सामाजिक जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं,
जी
लेकिन वो एस्थेटिकली इन्वॉल्व करते हैं उसको, जिससे एक बायर अगर कोई कलेक्टर है उस पेंटिंग को ले वॉल पे लगाए तो नेगेटिव फीलिंग ना आए, तो
जी
जैसे मान लिया वीमन हरेसमेंट है
या
या और एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो फिर पोस्टर की कैटेगरी में ना चले जाए, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो सभी कलाकार सामाजिक मुद्दों को कहीं ना कहीं उठाते हैं, लेकिन वो इस तरह से करते हैं कि एस्थेटिकली भी अच्छा लगे और बात कह भी दी जाए, तो
जी
जैसे
जी
पर्यावरण पे कोई कलाकार बना रहा है तो वो पेड़ बनाएगा, बट वो ऐसे बनाएगा कि वो मैसेज भी जाए और कलरफुल
जी
और एक टू
जी
डायमेंशनल स्पेस अच्छा भी लगे, नहीं तो फिर वो एक पोस्टर की कैटेगरी, इलस्ट्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। तो
जी जी
हम लोग निरंतर जो इस तरह की चीजें करते हैं वो मैसेज देती हैं और सोशल मुद्दों पर काम करती हैं।
आज तक आपको अपने कैरियर में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है और क्या मिला है?
मेरा यादगार जो शो रहा है, सबसे पहले तो 2007 में मैं पहले गवर्नमेंट सर्विस में था, वहाँ से ड्रॉप करके मैं शो करने कोलकाता गया
ओके
2007 में, तो
जी
2007 में मतलब आप ये देखिए कि बिल्कुल जॉब छोड़ी हुई है और फ्यूचर का कुछ नहीं पता, क्या रिकग्निशन मिलने वाली है, तो
जी
मैंने बिरला म्यूजियम कोलकाता, बिरला आर्ट एंड कल्चर सेंटर
जी
कोलकाता
जी
में शो किया, ग्रुप शो था। वहाँ जो है मेरी पेंटिंग जो है श्री डी के बिरला और मैडम सरला बिरला जी जो है
जी
उन्होंने देखी, और देखते ही बड़ा अप्रिशिएशन भी, आकर्षित हुए उसकी तरफ और अपने म्यूजियम में कलेक्ट किया उस टाइम पर, तो मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली, क्योंकि मैं एकदम उसी वक्त क्रैश 2007 में जॉब
जी
को छोड़ के और एक पैर जमाने के लिए
जी
निकला था। तो एक तो वो पल है, आज भी वो उनके म्यूजियम में लगी हुई है, काफी बिग पेंटिंग थी।
जी
और
जी
उसके बाद दूसरा यादगार पल जो मैं आपको शेयर करूंगा, 2009 में, उसके बाद 2009 में मैं ताज होटल में शो किया,
ओके
और वो उत्तरांचल पे सीरीज थी, और वहां पर श्री सचिन तेंदुलकर जी जो है और
ओके
पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने पेंटिंग देखी, और वो डायरेक्ट मतलब होटल के गेस्ट थे, बट मेरा शो लगा था तो उन्होंने विजिट किया और
जी
फिर बातचीत की और उसको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट दिखाया और काफी अप्रिशिएशन की। तो वो आज भी मुझे पावर देता है कि ऐसे दो लोगों का मैग्नेटिक टच मुझ पर रहा और मैं इसीलिए आज भी यात्रा कर रहा हूँ, तो
जी
कहीं ना कहीं वो मेरे कामों को देख रहे होंगे और अप्रिशिएट कर रहे हैं।
आलोक जी, पेंटिंग के अलावा आप में एक और बहुत बड़ा हुनर है, आप अच्छे कवि हैं। वो
जी
शौक कब से शुरू हुआ, कब से आपने लिखना शुरू किया?
देखिए, कलाकार जब चित्रण करता है तो कुछ शब्द भी आते हैं, तो जैसे आपने कहा ना कुछ सामाजिक समस्याएं या वो, तो एक कवि जो है उन शब्दों को लिख लेता है और हम उसको शब्दों को चित्रों में ढाल देते हैं।
जी
तो
जी
मैं शुरू से ही स्कूल लेवल कॉलेज लेवल से ही कुछ शब्द आते थे, लिख लिया करता था, दो लाइन लिख की तीसरी नहीं कर पाया पूरी,
जी
छोड़ दिया,
जी
फिर पेंटिंग की तरफ आ गया। तो
जी
एनी हाउ मैं उनको कलेक्ट करता रहता था, रखता रहता था, कभी
जी
किसी को दिखाया नहीं। तो उसके बाद एक बार मैं जो सीरीज बना रहा था, मैंने 2010 में बनाई थी दिल्ली के कंस्ट्रक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ ए सिटी, तो
ओके
उसमें शहर की कुछ समस्याएं, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और उसके लोगों को परेशानी, तो उस पर कुछ शब्द लिखे और सीरीज शुरू कर दी। तो वो भी अनगढ़ सबसे, कोई कंप्लीट फॉर्म नहीं थी, तब तक
जी
पेंटिंग का आइडिया आ गया, लेकिन
हाँ
वो शब्द बेस में थे, तो इस तरह के शब्द मेरे माइंड में घूमते रहते। फिर मैं एक बार हैदराबाद वर्कशॉप में गया, तो वहाँ आर्ट कैंप था,
हाँ
रेड्डी फाउंडेशन, वेरी फेमस सोशल वर्कर,
जी,
तो वहाँ जो है कैंप में 2017-18 में गया मैं, तो वहाँ किसी ने मेरी स्केच बुक और डायरी में अपने कुछ ड्राइंग्स और उसके साथ कुछ पोएम जो कि पूरी नहीं थी, दो लाइन तीन लाइन, उन्होंने कहा सर आप तो छिपा के रखे हो ये, तो आप, उन्होंने नाम दिया मुझे क्लोजेट पेंटर, क्लोजेट पोएट।
ओके
हाँ,
जी
तो मुझे ये वर्ड बड़ा समझ में आया, तो मैं एक क्यूरेटर थी, उन्होंने कहा सर आप लिखो, आप तो उनको डिसाइड करो,
जी
देन फिर कुछ और कामों में इन्वॉल्व हो गए। फिर लॉकडाउन का टाइम आया और लॉकडाउन में मैंने खूब कविताएं पढ़ी, कवियों की रचनाएं पढ़ी
जी
यूट्यूब पे, भी उनको सुना
हाँ
और थोड़ा सा पेंटिंग से डिस्टेंस बना के उस पर फोकस हो गया। तो
अच्छा
मैंने मतलब सोचिए अप्रैल मंथ, अप्रैल 2020 से पोएम्स लिखना शुरू कर दिया, जिनको मैं सेम टाइम सेम डे पूरा ही करता था, छोड़ता नहीं था।
अच्छा क्या
तो
बात,
कभी हाँ वो कविताएं मेरे 25-30 जो है ऑनलाइन मैंने गूगल पे भी डाली हुई है,
जी
आप
जी
देख
जी
सकते हैं, और
मैं
youtube.in पर आप मेरा नाम टाइप करेंगे तो उस पर आ जाएगी। तो मैं उस पोएट्री की जर्नी को भी साथ साथ अब चला रहा हूँ, जैसे ही पेंटिंग के लिए आइडिया ढूंढना था उस पर पोएट्री कर लेता हूँ, और
जी
एक
जी
अच्छा
जी
खासा कलेक्शन हो गया है और वो
अच्छा,
कहीं ना कहीं पेंटिंग को सपोर्ट करता है।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा दो लाइनें अपनी सुना दें।
तो एक बहुत ही मन को मेरे छूने वाली जो कविता है, जो मेरे व्यक्तित्व को या आप जैसे लोगों को नहीं लिखती है, कि
जी
हम लोग जो कला के फील्ड पे हैं बहुत सरल होते हैं, जिस
बिल्कुल
सरलता से आप हम लोगों को जोड़ रहे हैं,
जी
तो वो एक बहुत ही प्रभावी है। जबकि मैं मतलब मैंने देखा है कि आप भी एक बड़े मुकाम से आपने काम किया, बड़ी प्रसिद्धियों को छुआ, लेकिन सरलता को आज भी नहीं छोड़ा। तो हम कला के फील्ड के लोग ऐसे हैं,
बिल्कुल
ये उसी पे लिखी है, कहने को आम हूँ, कहने को आम हूँ। तो यहाँ जो आम वर्ड है एक्चुअली, ये जब लिखी मैं बताना चाहूंगा, आम
जी
मैं घर में मैं टेस्ट कर रहा था आम को,
अच्छा
उसके फ्लेवर को, ये आम और आम दोनों को जोड़ दिया, कॉमन
जी
और फ्रूट भी, तो
फ्रूट
मुझे लगा कि वाह ये तो मतलब कितना साधारण फल है और ये रस ही देता है। तो वहां से उसकी कविता किसी और, इंस्टेंट ये पूरी हुई है।
जी जी जी
तो कहने को आम हूँ, कहने को आम हूँ फिर भी शख्सियत खास रखता हूँ, कहने
ओके
को आम हूँ फिर भी शख्सियत खास रखता हूँ, जिसके भी मुंह लगा हूँ, जिसके भी मुंह लगा हूँ, उसके हाथों में मिठास मलता हूँ,
क्या बात,
उसके हाथों में मिठास मलता हूँ। तो ये आम की फितरत यही है कि जिस
हाँ
हाथ में
बिल्कुल
जाएगा तो
बिल्कुल
अतुल जी जिस हाथ को लगेंगे तो वहां मिठास ही
बिल्कुल
भरेंगे। तो ये हमने सब कलाकारों को, स्वयं को भी शामिल करता है लिखती है, और
जी
ये मुझे
जी
बड़ी
जी
ताकत है।
मतलब बेसिकली एक सरलता जो है किसी के कैरेक्टर में वो, और उससे आपने एक आम जो फ्रूट है उसको कंपेयर किया, और दोनों बहुत ही वाजिब है
हाँ
जी।
जी
आलोक जी एक चीज मैं चाहूंगा कि आप जो नए बच्चे आर्ट की फील्ड में आना चाहते हैं
जी
उनको थोड़ा सा गाइड करें कि क्या उनको होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, एंड व्हाट दे आर लुकिंग अहेड इन लाइफ। मतलब हर आदमी आज के जमाने में, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि तो पैसे के लिए आ रहा है, हम मानते हैं कि सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, और मेहनत शायद हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि आर्ट में ही है, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं। लेकिन वो इंस्टेंट सक्सेस वाली जो पीढ़ी है आज की, उनके लिए कुछ कहिए जो
जी
आर्ट में आना चाहते हैं।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमने इसमें से देखा है लोगों को कि वो हमारी पेंटिंग्स को, हमारी फेम और एग्जीबिशन को देख के वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि ये हम बनाएंगे तो बिकेगी। तो पहला
राइट
प्रश्न लोगों के दिमाग में यही है, चाहे
जी
वो
जी
आर्ट फील्ड
जी
में आने वाले बच्चे हो या कोई एमेच्योर आर्टिस्ट हो, तो उनका प्रश्न ये है क्या ये दिखती है और कैसे दिखती है। तो वो ये नहीं देखते कि इस आर्टिस्ट ने कितनी जर्नी की है, किस तरह से इसको मुकाम को हासिल किया है, और अभी भी स्ट्रगल कंटिन्यू है। तो
जी
उनको ये है कि जैसे कि आजकल सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में शॉर्टकट अपना ले रहे हैं,
जी
लोगों के पास इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया है, वो किसी टीचर की शागिर्दगी न करके, जो पहले गुरु की शागिर्दगी करते थे हम लोग,
जी जी जी
और उसके बाद कुछ सीखते थे 4 लाइन सीखना, लेकिन आज गूगल सबका गुरु बन गया है। गूगल
बिल्कुल
है, यूट्यूब है, उस पर उससे डाउनलोड करें, कॉपी करें, कट करें, पेस्ट करें, और एक इंस्टेंट मीडियम
बन
तैयार हो
जाता
जाता है।
है।
मान लिया आप स्कूल में ही किसी भी विषय पे बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं गूगल कर लो,
गूगल
और
से कर लो,
उससे, तो
बिल्कुल बिल्कुल
ये एक शॉर्ट टर्म जो गेम है, और उससे रिजल्ट भी आ जाता है, जानते हैं कि एक रिजल्ट इंस्टेंट तो आ जाता है,
जी
बट लॉन्ग टर्म आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जो आपका ब्रेन एग्जीक्यूट करता, जो एक्शन लेता, जो विजुअलाइजेशन करता, वो नहीं हो पाता। जो हैंड एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है पेंटिंग बनाने में,
जी
वो खत्म हो जाता है। इमेजिनेशन पावर, आप देखिए इंटरनेट से क्या हो रहा है, इमेजिनेशन पावर खत्म हो जा रही है,
बिल्कुल
विजुअल सेंस जो है खत्म हो जाती है, उनके माइंड में पिक्चर्स नहीं आती है।
राइट
अगर हम गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं तो गूगल के माइंड के थ्रू से ही सारे चीजें ले रहे हैं। तो यंग पीढ़ी क्या कर रही है कि लैपटॉप लेके पेंटिंग करने लगती है,
जी
उस पर उसके इमेजेस डाउनलोड करी, देन उसको फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट
बिल्कुल
को कैनवस पर कॉपी
जी
करना,
जी
तो वो एक इलस्ट्रेशन हो गया। जैसे आपने शुरू में कहा था कि भाई कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल आर्ट हो गई, वो फाइन आर्ट नहीं। जहां
फाइन
तक
आर्ट
हमारी फाइन आर्ट है, उसमें उसमें ऐसे कोई रिसोर्सेज हम नहीं लेते, हम ट्रेवल करते हैं और स्केचिंग करते हैं। तो नए नए कलाकारों को जब वो कॉलेज से निकले, कि कुछ टाइम तो वो ट्रेवल करें, स्केचिंग करें, कुछ बुक्स रीडिंग करें, फिलोसफी, फिर जाके वो एक बॉडी ऑफ वर्क तैयार करते हैं। फिर उसके बाद भी उसमें कुछ स्टाइल, अपनी अपनापन होना चाहिए। मान
जी
लिया किसी
जी
फेमस पेंटर को कॉपी कर रहे हैं तो वो वही हो गया। जैसे आप देखेंगे सिंगिंग में लोग किसी को फॉलो करते हैं, कुछ
बिल्कुल
दिन रिसीव कर लेते हैं, अपनी
जी
कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो यहाँ क्या है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो उसको बनाने में हमारे टाइम में तो यही था कि भाई आपको 8-10 साल काम करना है, तब जाके आपकी स्टाइल बनेगी। लेकिन आज कॉलेज से निकलते ही लोग अपनी स्टाइल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ कॉपी कर लेते हैं, सारा
बिल्कुल
वर्ल्ड का
बिल्कुल
रिसोर्स
बिल्कुल
इंटरनेट पर है। कुछ
जी।
दिन उसको उसको लोगों को, देखने वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन जब सर्च करते हैं तो कॉपी है। तो कॉपी नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग जर्नी होनी चाहिए। और तभी जो कलेक्टर्स हैं, जो आर्ट के कलेक्टर, जैसे आपने कहा कि
जी
जो आर्ट के कलेक्टर्स हैं, वो जो है उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि आर्टिस्ट की क्या जर्नी है, और कहाँ से ये उठा है, और कहाँ से इसके बिगनिंग के जो ऑथेंटिक ड्राइंग्स हैं वो देखी जाती है। वो हम कलेक्ट करके रखते हैं आज भी, 20-30 साल पुराने पेपर सब कुछ
जी
रखते हैं।
जी
नेवर नो कि आगे जाके कि किस उस पर पहुंचे, तो हम कलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह जो बायर है आर्ट का, वो आपकी लाइफ को कलेक्ट कर रहा है, वो आपकी लाइफ को, एक एक पल को कलेक्ट कर रहा है। वेंगोग जो था, वेंगोग फेमस पेंटर,
जी।
उसका भाव, वो तो वो पेंटिंग बनाता था और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था, थोड़ा क्योंकि कोई आर्ट उस जमाने में सपोर्ट भी नहीं थी, बट उसने पेंटिंग बनाना नहीं छोड़ा और उसकी लाइफ टाइम में एक पेंटिंग नहीं लिखी। लेकिन आज की, और उसका भाई उस समय उसको थ्रू बाई मनी ऑर्डर मनी भेजता रहता था जिससे वो सर्वाइव करता था, लेकिन कोई कलेक्टर नहीं था। उसके बाद वो सारी पेंटिंग आज म्यूजियम के पीस है, इवन विंडॉक का रूम की कोई भी एसेसरी एसेट सब नीलाम होता है, सबकी ऑप्शन लगती। तो लॉन्ग जर्नी है, इसमें शॉर्ट टर्म कुछ नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिकली लाइफ में अगर सक्सेस होना है, नाम कमाना है, तो उसका बेस वर्क जो है, ग्राउंड वर्क जो है, वो अच्छा होना चाहिए, शुरुआत से होना चाहिए, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी बनी रहे, वो बहुत जरूरी है कि वो कंटिन्यू करें। आलोक जी, मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा, आपने समय निकाला, हमसे बात करी, और द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में आपने अपने विचार रखे, और थैंक यू वेरी मच सर।
तो मैं भी आपका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, और मुझे तो पता ही नहीं चला समय कब बीत गया, इतने अच्छे क्वेश्चन और इतने अच्छे ख्याल, मतलब, और पोएट्री तो आपने शुरू करके रोक दी, मुझे लगता है फिर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं काफी पोएम सुनाऊंगा, और जो आपके प्रश्नों के बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था,
जी,
तो
जी।
लगता है कि एक बार और मुलाकात होगी और बड़े
प्लेटफॉर्म
पर।
बिल्कुल,
आपके आपके इस यात्रा को मैं बहुत अच्छे मुकाम पर अभी से देख रहा हूँ, और सभी लोग जुड़ते चल रहे हैं, और सभी आशान्वित रहे आपकी अच्छे विचारों से, सभी प्रेरित हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू,
थैंक यू।
Listeners, I hope you had your learning from this episode and got inspired to keep moving towards attaining your goals. Please share this episode with your friends by visiting my website www.theinfluencertalks.com. If you have stories to share about people who influenced you positively, please do share with me, and I am waiting to hear from you. I'll catch up with you next week with a new episode of The Influencer Talks. Till then, be safe and be healthy.